निरंजन उपाख्यान श्रवण किया। साधारण लोगों के लिए निरंजन उपाख्यान बहुत ही आवश्यक है समझना और उसको अनुभव करना। प्राचीन बहिर राजा समस्त पृथ्वी ने इतना यज्ञ किया, एक एक कूप के अंतर में यज्ञ कुंड बने, सारा पृथ्वी कुशों से छा गया और कितना यज्ञ किया उसका ठीक नहीं, कभी मन शुद्ध नहीं, आत्म तत्व को नहीं जान सके, भगवत तत्व को नहीं जान सके। नारद जी की बड़ी उन पर कृपा हुई। श्रीमान शुभानंद जी ने सवेरे इसको विस्तृत रूप में कहा है, इसलिए इसमें से जो विशेष शिक्षाएं हैं उसी को मैं बतलाऊंगा। तो नारद जी उनको समझने लायक या साधारण लोगों को भी समझने लायक बनाकर, ये जगत क्या है, दुनिया क्या है, ये शरीर क्या है, भगवान क्या है, हम लोगों का कर्तव्य क्या है, माया क्या है, उसमें कैसे भूल रहे हैं, इसके लिए सुंदर दृष्टांत युक्त देख करके उपाख्यान बतलाया, जिसको पुरंजन उपाख्यान करते हैं। ये जो पुरंजन राजा कौन है, वो राजा है जीव। कौन सा जीव? जीव दो प्रकार के होते हैं, इसी होते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं भाई, ये तो जीव दो प्रकार के हैं, एक बद्ध और दूसरा मुक्त। मुक्त लोग बैकुंठ गोलोक वृंदावन में भगवान की नित्य सेवा करते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि ये संसार क्या है। और बद्ध जी जो हैं ये भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो भी उसमें दो भाग होते हैं, एक जो भगवान के उन्मुख है और एक भगवान के विमुख है। यहाँ पर जितने जीव हैं सब भगवान के करीब करीब उन्मुख हैं, किंतु उन्मुखता में भी तारतम्य है, सभी उन्मुख एक प्रकार नहीं। जैसे सभी छात्र हैं लड़के, किंतु छात्र होने पर भी क्लास वन का छात्र एमए का छात्र एक नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह से बद्ध जीव भी जो भगवान के उन्मुख हैं और भगवान के विमुख हैं, वो हजार हजार प्रकार की अवस्था वाले हैं। उन लोगों के लिए जो कि संसार में हैं, कुछ विमुख हैं, कुछ भगवान के उन्मुख भी धीरे धीरे हो रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए नारद जी समझा रहे। देखो ये जीव है पुरंजन, पूरा अंजन माने क्या, पूर का मालिक, पूर को भोगने वाला, ये हुआ पुरंजन ना? ये पूर है, उसको भोगने वाला ये पुरंजन है। अच्छा कौन कौन जी? जो जीव देह प्राप्त करके समझता है कि मैं यही हूँ, देहाभिमान युक्त, वो कैसा, एक पैर वाला, दो पैर वाला, क्या हुआ जी, एक पैर वाला, दो पैर वाला, बिना पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, बहु पैर वाला। भौर एक मनुष्य को दो पैर, चार पौर एक पैर किसको होते हैं, चौपायों को, गाय बैल भैंस इत्यादि। छह पैर किसको होते हैं, भौरे को, छठ। अच्छा एक कीड़ा होता है जिसके आदि से अंत तक इतना लंबा होता है, पैर भरे रहते हैं, है? और मकान में घुस जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा, और ऐसा पकड़ेगा जो छोड़ेगा नहीं, चिमटे से भी छुड़ाओ तो नहीं छोड़ेगा। और बिना पैर वाला कौन जानवर है? सांप, जोंक, ये सब जो चीजें हैं ये बिना पैर के, ये सब ही पूर हैं। है ये अभिमान करने वाला, जब मैं जानवर हूं, पशु हूं, पक्षी हूं, देवता हूं, मनुष्य हूं, गंधर्व हूं, भेड़िया हूं, मछली हूं, कुर्म हूं, ये सब जीतने वाले हैं, यही ये बद्ध जीव है, ये सभी पुरंजन हैं। किंतु किसी को जो सुख संसार में अपने कर्मों से मिला हुआ है, किसी को तृप्ति नहीं है। विशेष करके जिस योनि में ये जाएगा, ये वो अपनी जोड़ी को खोजेगा। बिना जोड़ी के उसको सांप होगा तो सांपिन रहेगी, देवता रहेगा तो देवतानी भी रहेगी, मनुष्य होगा तो स्त्री रहेगी, गधा होगा तो गधी होगी, सब जगह ये दोनों हैं। ये दोनों के लिए पुरंजन नाम इसमें है, एक के लिए नहीं। अभी स्त्री तो अपने कर्म वर्ग से स्त्री हुई है, पुरुष फिर स्त्री भी पुरुष हो जाएगी, यदि पुरुष की चिंता करेगी पुरुष भी हो जाएगा। इसलिए ये पक्का सब समय के लिए हमारा स्त्री शरीर है और पुरुष शरीर है, ये ऐसा नहीं, दोनों ही पुरंजन को डिनोट करते हैं, उनको सूचित करते हैं। उनका सखा एक किंतु है, वो नहीं जानता, तभी एक सखा है बीच बीच में परामर्श देता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो कौन है? साक्षी ईश्वर है। देखो गंदा मत काम करो, झूठ मत बोलो, उसको मारो मत, लूटो मत, डकैती मत डालो, इसके साथ में ऐसा व्यवहार मत करो। अलक्षित रूप से कहता, कभी उसकी बात मान लेते हैं, कभी नहीं मानते, अधिकांश नहीं मानते हैं, किंतु वो साक्षी केवल है, साक्षी जीवात्मा भी है इस शरीर का, इसलिए उसको प्रज्ञ कहा गया, जीवात्मा वो भी साक्षी है, किंतु वो साक्षी ऐसा हो गया कि उन चीजों को जिसके लिए साक्षी बनाया गया उन चीजों को अपना समझने लगा और मैं समझना लगा, यही उसका दोष है। और उसमें जो ईश्वर उसके मित्र हैं वो केवल साक्षी है, उसके सुख दुख का आस्वादन नहीं करते, उस पर छोड़ देते हैं, कर्म फलों में वो आबद्ध नहीं होते और जीवात्मा हो जाता है। मैं हूं, मेरा है, भगवान में नहीं होगा, इन लोगों में होता है। इसलिए देहाभिमान मैं और मेरा का प्रतीक है। एक महल है, वो महल क्या है? ये शरीर। ये महल कहाँ है? पंचाल देश में। पंचाल देश में अपनी स्त्री को, पुत्र परिवार सबको, धन जन को छोड़ करके वो घूम रहा है, और भी हमारी पत्नी से भी अच्छी कोई लड़की मिल जाए, किशोरी मिल जाए, जितना भी धन है, प्राकृतिक वृक्ष हैं, बगीचे बाग हैं, पशु हैं, इनसे भी अच्छा हमको और कोई स्थिति मिल जाए, उसको तृप्ति नहीं होती। यही बद्ध जीव की निशानी है, वो भगवान की सेवा नहीं कर करके अपने लिए सब कुछ करता है, पंचाल देश में रहता है। पंचाल देश माने क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं, क्या विषय हैं?
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जहां पर है इसको कहते हैं पंचाल देश। और उस पंचाल देश में ये महल खड़ा है, कौन सा? दो पैर का, चार पैर का, आठ पैर का, दस पैर का, बहु पैर का, बिना पैर का। और उसमें सबसे सुंदर कौन सा है? दो पैर वाला यह मनुष्य नामधारी जो राजभवन है, बहुत ही सुंदर बना है। और इसमें नौ द्वार है। नौ द्वार माने क्या? नौ द्वार देखो कौन कौन से हैं, ये दो और ये दो, ये दो, ये जुड़वे द्वार है। अकेला नहीं, ये जुड़वा द्वार है। आजकल अच्छे अच्छे भवनों में जुड़वे द्वार होते हैं, इधर से जाकर के बंद करो, इधर से भीतर से भी बंद हो जाए, जब इच्छा तो उधर से खोल लो, बहुत सीधे की शरीर है ये। तो ये जुड़वा, ये कान दोनों और नाक, और एक मुख, एक
एक लिंग और एक विकार, छ और तीन नौ, जिसमें से सामने के जो पूर्व की तरफ में दरवाजे हैं वो कौन कौन है? दो ये और ये नहीं और मुख, ये सामने के पांच दरवाजे हैं ना? और एक दक्षिण की तरफ में है, दक्षिण भुजा वाला ये दक्षिण और बाम वाला उत्तर, ये उत्तर में है। मैं पूर्व की तरफ में बैठा हूँ एकदम, ये इसका दरवाजा। और जो पश्चिम की तरफ में दो दरवाजे हैं वो नीचे वाले दो दरवाजे, कभी इधर से घुसता है कभी इधर से घुसता है कभी उधर से घुसता है, माने वो जो ऊपरस गंध पंचारु देश है उसमें ये भोगता है, ये इन्हीं में से सब कुछ है। उसमें उनकी प्यारी कौन सी है? पुरंजनी उसकी पत्नी जी है, प्यारी पत्नी, वो है बुद्धि अथवा अविद्या, अविद्या जनक जो बुद्धि है। अविद्या मैंने भगवान को भूल करके इसको समझना ही नहीं, मैं बड़ी सुंदरी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ इत्यादि, मैं बहुत बुद्धिमान विद्वान हूँ। ये जो जहाँ पर बुद्धि है ये बुद्धि पुरंजनी है, वो भी पति खोज रही थी और ये भी पत्नी स्त्री खोज रहे थे, कोई पंचाल लगर के इस शरीर में दोनों की भेंट हुई और दोनों उसमें प्रवेश किया, एक पुरुष हुई एक नारी, चाहे कोई भी योनि हो, मनुष्य योनि के लिए ही नहीं कहा गया, किसी भी योनि में जाओ ये दो चीज रहेंगे। अब दो अंधे भी इसमें हैं, जिसके सहारे से ये पांच जो व्यक्ति हैं ये काम करते हैं। ये दो अंधे कौन है? हाथ और पैर, आंख नहीं है, ये आंखों में दूसरे के बल से चलते हैं, हाथ में भी नहीं, एक मच्छी भी यदि सो रहे हैं आंख बंद करके मच्छी को भी नहीं भगा सकते, ये कहां क्या है। दोनों ये अंधे किंतु बिना इनके कोई काम नहीं चलता, इसलिए पुरंजन जी के प्रधान अस्त्र ये अंधे दोनों सेवक हैं। और इसमें एक सांप है जो इसकी रक्षा करता है, सांप क्या है? सांप पंच प्राण, क्या प्राण, अपान, ध्यान, उदान, समान, इनके अलग अलग क्रियाएं हैं, कोई चीज मुख में दो अपने आप नहीं चले, पैखाना करना है तो बेसिक पुस्तक में अपनी थोड़ी सी एक हवा आएगी दबा देगी निकल जाएगा, इस तरह से कोई ब्लड सर्कुलेशन कराती है, कोई कुछ कराती है, ये पांच प्राण न रहे बस आदमी मर जाएगा, पुरंजन और पुरंजनी बस समाप्त हो जाएंगे, ये पंच प्राण है। इस प्रकार से ये लोग सब भोगने लगे। अब उसमें कुछ वर्षों के बाद में एक काल कन्या आती है, ये कौन है? ये है जवनराज की बहन। जवनराज कौन है? मृत्यु काल है, काल कब आएगा कोई ठीक नहीं, तो अपनी बहन को पहले भेजता है। और ये बहन कौन है? वो वृद्धावस्था, उसको कोई नहीं चाहता। नारद जी के पास में गई, नारद जी भग गए और कहा ये तुम्हारा जो ये पति वो है पुरंजन है। नारद जी इस जगत में देखे जाते हैं, ऐसे महापुरुष लोग देखे जाते हैं, किंतु काल का उनके ऊपर में विक्रम नहीं होता। और जो भगवान का भजन नहीं करते, आत्म तत्व को ठीक से नहीं जानते, भगवत तत्व को नहीं जानते, काल उन पर अपना प्रभुत्व जमा देता है, पहले अपनी बहन के द्वारा उनको पकड़ाता है। उस बहन से कोई शादी नहीं करते, वो वृद्धावस्था कैसी, आंखें धसी हुई, पेट सरोवर जैसा गहरा, कान वैसे सूर्पनखा जैसे और नाक, बड़ी भद्दी काली कलूठी, बोलने में भी बड़ी तेज तर्रार, उसको कौन पसंद करे। किंतु वो ऐसी है कि जबरदस्ती पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है, किसी किसी को पकड़ लिया है और कोई कोई अभी बाकी है, वो समझते हैं कि उसे हमारी भेंट नहीं होगी, हम लोगों को तो पकड़ लिया है और बाकी जो अभी किशोर किशोरी हैं उन पर कुछ दिनों में उसका धावा होने वाला है, ये समझ रखो। दांत तोड़ देगी पहले, आंखों की दृष्टि निकाल लेगी, इस पर सफेद रंग पोत देगी, अपने आप शरीर की शक्ति निकाल लेगी, तुम्हारा सब जितना भी मान है दूर कर देगी। ऐसे होकर के चलोगे बिना लठिए के सहारा और दम खांसते हुए दम निकल जाए। वो अपनी सारी सेना को बुला लेती है कालकन्या, जितने रोग हैं जितने जो कुछ हैं सबको बुला करके एक साथ में आक्रमण करती है पुरंजन के महल पर। बहुत दिनों तक 50 वर्ष की उम्र से लेकर के 100 उम्र तक लड़ाई झगड़ा चलता है। अपनी सेना से चारों तरफ उनके किले को घेर लेती है, 9 द्वारों को धीरे धीरे बंद करने लगती है और अंत में उसे परास्त कर देती है। और अंत में वो पुरंजनी की चिंता करते 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 फिर पुरंजनी जैसा शरीर लाभ करके जन्म लेती है। और विद्याप सिंह की साथ में है कौन, वो साथ नहीं थे, बड़ी उसकी कृपा हुई। फिर कहीं उसका जन्म हुआ कहाँ, मलयाल देश में, और किसी भक्त से शादी हो गई। ये भगवान की असत्य की कृपा है, न जाने तुम लोगों की न जाने कहाँ शादी होती, कहाँ कहाँ के रहने वाले लोग, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड निशान कुंड में शादी कर वहाँ पर जन्म दे दिया। ये भगवान की अहत की ये कृपा है, न जाने कोई संस्था था या नहीं था कोई भी पता नहीं, किंतु हो गया। यहाँ पर हरि कथा सुनने के लिए क्यों चली आई, क्यों उनके मन में ऐसा हुआ, ये भी भगवान की है कृपा। इसलिए उसे शिक्षा मिलती है बहुत सी, इन शिक्षाओं को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अंत में भक्त पति के साथ में संग किया और उसकी सुगति हुई, उससे उन्होंने बदला, उसको अधिक बदलाने की जरूरत है। किसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर मिला और इसमें गुरु जी की कृपा हुई, संतों की कृपा, ये भगवान की कृपा रूपी दायी है। इतना सुदृढ़ नौका भी पा करके यदि भगवान का भजन नहीं किया तो यह जन्म दिखा दे। इस सूचे समय ये भागवत के पढ़ने का उपदेश, बहुत से उपदेश देते हैं भागवत की कथाएं कहेंगे, वो अंत में घुमा फिरा करके यही लगाते हैं कि उसे धर्म करो, उसे दान करो, गृहस्थ धर्म में ही रहो, भगवान का भजन करो, ये भी करो। शुद्ध रूप से सबको छोड़ करके आसक्ति संसार से एकमात्र भगवान के चरण में आसक्ति रख करके करो, ऐसा नहीं कहते। उसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए भाई एक पीछे से गुप्त साधन पुरंजन जी को नारद जी, वो गुप्त साधन क्या, एक हरिण था एक हिरणी थी। हरिण कौन था, वही पुरंजन, हरिण कौन थी, वही पुरंजन, दोनों एक सुंदर बगीचे में बड़े प्रेम के साथ में वार्तालाप करते हुए सुंदर सुंदर कोमल कोमल मधुर मधुर भाषा से चल रहे हैं। पांच ही में नदी है, पानी भी इसमें कुछ नहीं, भवरे मरवा रहे हैं, कोयल चहक रही है, तरह तरह के फूलों का सुगंध चारों तरफ में भर रहा है, बसंत की ऋतु है, ये सब चीज है। इसमें मुग्ध होकर के दोनों चरने लगते हैं, भूल जाते हैं कि एक शिकारी है पानी, वो शिकारी शिकार खेलने आया और देखा कि बहुत सुंदर मोटे ताजे बहुत ही सुंदर हल है, बस उसने दान संदान किया। सामने से भेड़िए कहो या उसी के सिखाए हुए शिकारी कुत्ते 8-10 लगा दिए सामने से और एक तरफ में आग लगा दी और एक तरफ में जाल लगा दिया। जब इधर में जब उसने हजन में देखा हरिण ने सोने के साथ में तो अभिलाष कर रहा था, बड़े प्रेम के साथ में चल रहा था घास, सामने में जा रही है, देखा जिसे बांध सोने एकदम बांध चला और सुनने की देर है, बस एकदम संधानी कर रहा है। और इधर में सभी कुछ देखो, ख्याल एक तरफ में, एक तरफ में और एक तरफ में, कुत्ते शिकारी उन पर बात बस दौड़ रहे हैं खाने के लिए, पकड़ ही दिए। इसमें देखो मैं तो गंदगी करके फंसा, क्या हो गया और मेरा जीवन हो गया। उसने आँख बंद कर दिया, हे गोविंदर आशिकरण अब तो जीवन है बस कभी कुछ। ये फिर भी जानना चाहते हैं संस्कार का सभी के लिए संभव कर नहीं है। असल है भाई भैया रे मरी रे मरा रे मरी रे मरा रे बस बुलाए ये सब कर सकते हैं। तुलसी जल और गंगा जल भी देने के लिए अब उसने स्मरण किया और स्मरण करते हैं देखो बड़ी विचित्र बुला हुई प्रभु बड़े दयालु लंबे हाथ पीते हैं कृपा से। उस समय बड़े जोर से आंधी और साथ साथ में बरसा, कंकड़ उठने लगे और शिकारी के आंखों में लगे और वो बांध छूट गया, संधान छूट नहीं रहा, वो छह सौ तीन साल छूट गया और वो कुत्ते को लगा और कुत्ते को उधर जाल जो लगाया था जाल मिल गया हवा में और आग थी वो पानी से बरसा से बुझ गई और अपने आँख हाथ मलने लगा। ये चारों तरफ से ही रास्ता चल गया और उसने आज कल कर देखा कि प्रभु बह रहा आपकी कैसी गया बस एकदम सुधा और सुनते हुए अपने सर में निकल गया। ये भगवान की दया, हम लोग भी ऐसे जाल में फंसे हुए समझो, जिससे हम अधिक प्यार करते हैं वो हमारा बंधन है। राजा मेरे प्रीति करे तो मोर बंधन, स्त्री मेरे प्यार करे वो बंधन, पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं कितने प्यार करते हैं कहीं मैं तेरे लिए करता हूँ कोई किसी के लिए नहीं, ये सब मोह है और भ्रम है। इसलिए भगवान का शरण लिया जाए। और भी उन्होंने एक बात बताया, भरत जी का उपाख्यान, भरत जी के साथ ध्यान में देते हैं कि भाव अवस्था तक वो साधन लेते हैं। 50,000 की बरस में उम्र में वो नौजवान थे, उस समय में हजारों और लाखों वर्षों की आयु होती, अपनी स्त्री को पुत्र को कन्या को राज्य को मलवत पर त्याग कर दिया। मलवत मैंने क्या, जब कसी लग जाएगी ना किसी को जोर से यहाँ पर रहना रोकिए तो ये तुम्हें रोके या कहीं जबरदस्त आएगी, जब नहीं ये संभाले ना ये कसी ऐसी है। उसने हरि का खूब जोर से कसी लगी, हरि कथा में मन लगा है सबसे जोर से मन नहीं लगेगा, जब जाओ कसी को निकाल दो और फिर आराम हो जाए बस। ऐसे ही ये संसार को मल समझ करके उस शक्ति को छोड़ दिया। अभी हम लोगों को कैसा लगता है, खूब आनंद लगता है, इसमें रस लगता है। अभी मल के समान नहीं ये संसार लगता, जिस समय ये मल के समान लगेगा ना तो भक्त महाराज की तरफ निकले, क्योंकि इतना होने पर भी थोड़ी सी दयाल होने की और वो दया थी साथ थी शांति कराई थी, ये दया उनसे लेकर के बैठ गई नीचे तीन जन्मों के लिए पीछे थे। साथी की दया बुरी चीज नहीं है, कोई किसी को मार रहा है उसको बचाएंगे नहीं, कोई भूखे मर रहा है उसको खिलाएंगे नहीं, नंगे को कपड़ा नहीं देंगे, ये तो दया है ठीक है, किंतु उसमें आसक्त मत हो। जो करेगा वो आसक्ति होने की गुंजाइश होती है, ये चीज की शिक्षा देंगे, किंतु विदेश की भांति में सब करते यदि मत उसमें आ सकता है तो बड़ी अच्छी बात। हिरणी के बच्चे को बचाना उनका दोष नहीं था, ये तो सात्विक दया थी, क्योंकि उसमें आसक्त क्यों हो गया, जो अपने बच्चे को स्त्री को राज्य को सबको कुछ छोड़ दिया उसमें आसक्त नहीं हुआ, तो फिर उसको गोदी में लेकर के बुला क्यों करने लगे, अपना क्यों मान बैठे, जब वही नहीं है तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और दिया क्या, किरणों के जल के साथ में उनका प्यारा एकलौता बेटा से भी अधिक प्यारा और कुत्ते थन से लक्ष्मी उनके साथ में चला गया। और इसकी आसक्ति होने से क्या हुई, जो सख्त में भगवान का चिंतन करते थे वो आसक्ति दूर हो गई। बहुत ही सुंदर बेचारा, बड़ा सुकुमार बच्चा।
वही अरे तू अपने अपनी स्त्री को नहीं दिखाई बस उसे वही याद आती इतने में काल आया और उसकी चिंता करते 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 इसलिए आप लोग भी जो जो चिंता करेंगे मरने के बाद में वैसे ही बातें होंगी इसलिए सावधान एकमात्र कृष्ण का चिंतन करेंगे गुरु वैष्णवों का चिंतन करेंगे नारद जी जैसे मुक्त महापुरुषों का चिंतन करेंगे गोपियां कैसे कृष्ण की सेवा करती हैं ब्रज की लीलाओं का चिंतन करेंगे और सब संसारी स्त्री पुत्र परिवार को कक्ष भ्राता को कक्ष पिता को कक्ष माता पिता इत्यादि कोई किसी का नहीं निश्चित से समझो परीक्षा कर लो तुम्हारे पति से प्यार करते हैं लड़का प्यार करता है घर का काम दो दिन बंद करो उनको खाने के लिए लग गया था जल गई थोड़ा सा क्लूच हो गया पैर से चल नहीं सकती तो जैसे मैंने आपके तो 50 वर्ष सेवा की अब दो दिन तो मेरी सेवा कर दो करेंगे दूसरी एक और वहाँ करके खड़ा कर छाती पर जलने लगेंगे और पति भी वैसे ही पति इसलिए चीज को समझे लिए बतला रहे हैं ये भागवत का चलन है लोटा खाली लाओ और रुक्मी जी का विवाह करा करके ये सब ये भागवत नहीं है इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करना ही यथार्थ में ये सब भागवत है भागवत आप लोग सुनिए राधा कृष्ण के चरणों में आप लोगों का प्रीति है इस तरह से क्या बतला रहा था दूसरी बात भरत जी के तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर गए अब सचेत हैं पूर्व जन्म में भगवान के प्रति उनका भाव तक हुआ था और कुछ भाव की सिद्धि हो गई थी इसलिए पूर्व जन्म की बातें भूले नहीं केवल स्थगित कुछ रह गया था भक्ति स्थगित हो गई थी किंतु मरी नहीं थी नष्ट नहीं हुई थी इसलिए जो ही समय मिला बस फिर भक्ति पनपने लग गई एक जन्म में उन्होंने ओंकार का उच्चारण नहीं किया जबरदस्ती उनके बाप ने और भाइयों ने गले में जनेऊ सूत्र केवल डाल दिया था किंतु न तो गायत्री न तो कुछ न तो कुछ ऊपर से कुछ नहीं करते न ब्राह्मणों का कुछ नहीं करते ऐसी कोई भी बात नहीं करते जब फिर सात्विक दया उत्पन्न हो और किसी के प्रति आसक्ति हो जाए बल्कि इससे विपरीत वो सब काम करते आप लोगों ने भद्रकाली इत्यादि की बातें सुनी है ये कैसा उनका जीवन अब इस समय में हो गया था भद्रकाली ने भी उनको बचाने के लिए असुरों को मार करके और उनके मुंड से गेंद खेलने लगी और उनसे कहा प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ आप ऐसा छिप करके मत रहे नहीं तो हम लोग भी नहीं समझ सकेंगे आपके महात्मा को रघुबंध राजा जा रहा था कहीं जा रहा था कपिलदेव के आश्रम में कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया उन्होंने याद जाओ ढूंढ लाओ बेगार बेगार जानते हैं बेगार जाओ बिना पैसा दिए हुए ले आया देखा जैसे एक मोटा सा था नौजुवक 15-16 वर्ष का बैठा है सब लक्षण है उसको लेकर के और पालकी में लगा दिया चीटी की और जानवरों को देख करके चलते पैर में पैर नहीं मिलते हिलने लगी राजा उस पर कुछ रुष्ट हो गए किंतु बोले ऊपर से जैसे हम लोगों से बोलते हैं ऊपर से मधुर और बीच से छुरी ठीक ऐसे कहते हैं प्यारे भैया अरे तुम थक गए ना थक गए हो अरे बहुत दुबले खाया नहीं शायद इसलिए दुबले पतले हो गए अरे ये शरीर भी तुमको धोने में जबकि भार लगता है तो ये पालकी धोने में नजर तुमको कितना कष्ट हो तो भगवान ने शायद इसलिए तुमको बनाया नहीं ताने मार रहे हैं तुम कुछ खाते पीते मोटे ताजे हो गए तो इस काम को तुम कर सकते थे वो बेचारे कुछ नहीं बोले समझ रहे हैं सभी वैष्णव को सहिष्णु होना चाहिए जब फिर भी वैसे पैर होते हैं तब फिर क्या बोले अरे तू जीता ही मर गया तू जीता है या मर गया नहीं जानता मैं राजा हूं मेरी आज्ञा का उल्लंघन इतना तुम्हें दुस्साहस घोर प्रमादी है ऐसा दंड दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो सदा जीवन भर के लिए तू दुरुस्त हो जाएगा उन्होंने मुस्कुराया भरती ब्राह्मण जो थे और मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से उसको कहने लगे गया।
कहां बदल दिया कि
बोलने लगे
अजी महाराज
यदि कुछ ढोने के लिए है तो भार तो ढोने के लिए ही है, समझ रहे हैं? जरा स्पष्ट करके कह रहा हूं, यदि भार है तो वो तो ढोने के लिए ही है, और यदि मार्ग है तो चलने के लिए ही है। मार्ग किस लिए होता है?
चलने के लिए होता है।